ओम शांति। ब्राह्मण पुरुषार्थ में अपने स्थिति को एकरस, अचल, अडोल, निर्विघ्न बनाना कैसे, तो इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे अभी भाई साहब। अपने स्थिति को अचल, अडोल, निर्विघ्न और एकरस स्थिति कैसे बनाए। मोबाइल फोन्स किसका भी बज रहे हैं, प्लीज स्विच ऑफ करेंगे।
ओम शांति। बाबा के इस योग भट्टी कार्यक्रम में आप सब ने अपने अंदर खूब शक्तियों को जमा किया है। योग में अगर विधि पूर्वक यथार्थ बैठते हैं तो बाबा सर्वसमर्थ अपने बच्चों को भी समान भाव का वरदान देता है। बीच बीच में ऐसे कार्यक्रम हमारी स्थिति को एक रस बनाने के लिए रखे जाते हैं, क्योंकि संसार जितना तमो प्रधानता की ओर बढ़ता जा रहा है, अंतिम समय की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, उतना हर क्षेत्र में अति हो रही है। परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां अपना विकराल रूप दिखा रही हैं। हमारे रहे हुए अनेक जन्मों के पुराने हिसाब किताब, प्राकृतिक रूप से आने वाली अनेक परिस्थितियां, प्रॉब्लम्स, आर्थिक रूप से आने वाली अनेक समस्याएं, पारिवारिक रूप से भी कई प्रकार के हिसाब किताब हमारी स्थिति की परीक्षा लेने के लिए बीच बीच में अचानक आ जाते हैं। अगर किसी का फाउंडेशन मजबूत नहीं है तो अनेक प्रकार के प्रश्न उठते, हलचल होती, खुशी गायब हो जाती है। इतनी ऊंची जीवन का भी नशा नहीं रहता। इसलिए हम सबको ये बीच बीच में तपस्या करने का चांस मिलता है, और जिसका ज्ञान और योग में इंटरेस्ट है, जो बाबा की श्रीमत का यथार्थ रीति से पालन करते हैं, उनका फाउंडेशन बहुत मजबूत होता जाता है। सिर्फ स्नेही हैं, सहयोग दे रहे हैं, उनके फाउंडेशन को कभी भी कोई भी बातें हिला सकती हैं। लेकिन अगर ज्ञान और योग को अच्छी तरह से अपनाया है, यथार्थ रूप से समझा है, तो आत्मा बहुत शक्ति संपन्न बन जाती है। जैसे इस समय आजकल दुनिया के अंदर ऐसे भवन तैयार करते हैं, ऐसी बिल्डिंग्स बनाते हैं जो कितने भी जोर से झटके भूकंप की आए उसे हिला भी न पाए, गिरा न सकें। उसके लिए वो बहुत ध्यान रखते हैं, ऐसी सीमेंट, ऐसी सरिया, ऐसे साधन यूज करते हैं ताकि छोटी छोटी हलचलों में बिल्डिंग क्रेक भी न हो। हमारे ये ब्राह्मण जीवन में भी किसी किसी भी प्रकार की परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति आ जाए, उसमें हमारी स्थिति एक रस रहे। एक रस स्थिति के लिए कुछ एक बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अनेक दुनिया के रस आत्मा को बहुत आकर्षित कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, जब मैं स्वर्ग की दुनिया रचता हूं तो माया भी एक नए प्रकार का स्वर्ग खड़ा करती है। ऐसे साधन, ऐसी सुविधाएं जिनको देखने से लगता है अभी ही स्वर्ग आ गया है, कलयुग का स्वर्ग। सब साधन सुविधाओं से संपन्न व्यक्ति, कई सेठ साहूकार, पैसे वाले, जिनके पास सब साधन सुविधाएं उपलब्ध हैं, समझते हैं कि हम तो अभी ही स्वर्ग में हैं। लेकिन स्वर्ग की उस सतयुगी दुनिया की एक भी निशानी उनके जीवन में दिखाई नहीं देती। स्वर्ग के अंदर, सतयुग के अंदर हर आत्मा संपूर्ण हेल्दी होगी। तीन चीजें उसके जीवन में समान रूप से प्राप्त होंगी, एक हेल्थ, दूसरा वेल्थ और तीसरा हैप्पीनेस। कलयुग में अगर एक चीज किसी के पास है तो दूसरी नहीं है। धन है तो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, स्वास्थ्य है तो धन नहीं होता, और अगर ये धन और स्वास्थ्य दोनों होते हैं तो भय के कारण खुशी नहीं रहती। जिनके पास अधिक धन है उनको इनकम टैक्स का ही सारा डर रहता है, पता नहीं कब क्या हो जाएगा। बाबा कई बार कहते हैं, अगर वो पुलिस वाले को देख लेते हैं तो उनका मुंह पीला पड़ जाता है, पता नहीं क्या होगा, उनकी खुशी कहाँ है। इसलिए इस कलयुगी दुनिया को तिलसम वाली दुनिया कहते हैं, जैसे सब चीजें मौजूद हैं लेकिन अंदर की शांति नहीं है, खुशी नहीं है, तृप्ति नहीं है। चाहे आत्मा को आंखों का रस खींचता है, चाहे कानों का रस खींचता है, चाहे मुख का रस खींचता है। ये मुख्य रूप से कन रस, नैनों का रस, मुख का रस, कई कर्मेंद्रियां अपनी ओर आकर्षित करती हैं, इसलिए स्थिति एक रस नहीं रहती। अगर एक रस स्थिति बनानी है तो ये जितने अल्पकाल के रस हैं उनसे न्यारा बनना होगा। कोई भी संसार में रस नहीं है, ये नीरस है, असार है। जब ये अंदर से पक्का हो जाता है कि संसार में कोई भी रस नहीं, तो आकर्षण से आत्मा मुक्त हो सकती है। इसलिए बाबा कहता, बच्चे गई की गई, ये दुनिया अब खत्म हुई की हुई। रोज हम लोगों को यही चैलेंज देता है, बच्चे ध्यान रखो, विनाश सामने खड़ा है। अभी आप लोग आए, बाबा ने यज्ञ स्थापना की, उस समय से ही पाठ पक्का करा दिया, बच्चे अगली दिवाली नहीं आएगी, अगली दिवाली नहीं आएगी। इसलिए जो करना है अब कर लो, कल किसने देखा। तो अंदर से एकदम बुद्धि उपराम रहती है। मम्मा हमेशा एक स्लोगन कहती थी, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, इसलिए जो करना है अब कर लो, कल किसने देखा। अगर समझते हैं बहुत समय जीना है तो एक कहावत है कि कल का भरोसा नहीं और सामग्री 100 साल की इकट्ठी है। आज की दुनिया की हालत यही है, व्यक्ति सब प्रकार के साधन सुविधाएं, बहुत सारी चीजों की सामग्रियां इकट्ठा करता, लेकिन अचानक चला जाता है, सब यहीं का यहीं रह जाता है। इसलिए अंदर से वृत्ति अगर रहती है कि अब मुझे जाना है, ये दुनिया मेरे काम की नहीं, तो प्रामता आत्मा की स्थिति को एक रस बना देती है। कोई भी आकर्षण उसको आकर्षित नहीं करती, क्योंकि जब यहां रहना ही नहीं है, जैसे मेहमान को किसी भी स्थान पर जाता है तो उसका पेटी बिस्तरा सब पैक रहता है, वो जानता है दो दिन के लिए आए हैं, जाना है, इसलिए कोई भी चीज का विस्तार नहीं करना है। तो जहां जहां हमारी बुद्धि विस्तार में गई हुई है उसको चेक करो, कौन कौन सी विस्तार की चीजें मुझे अपनी ओर भटका रही हैं, कहां कहां बुद्धि का विस्तार है, और विस्तार को सार में, चाहे वो अपने धंधे में विस्तार में गई हुई है, संबंधों के विस्तार में गई हुई है, अनेक प्रकार के झमेलों में लगी हुई है, अनेक प्रकार की इंसान की तमन्नाएं हैं जिसके पीछे उसको अपने लिए फुर्सत ही नहीं है। कई बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, सब कारोबार देखो, जब देखो इतना बिजी, दोनों कान में, एक कान से उतरता दूसरे कान में फोन लगा हुआ है, दिन रात लगे हुए हैं, बिजी हैं, बात करने की भी फुर्सत नहीं है, खाने के लिए भी फुर्सत नहीं है। अरे भाई क्या करोगे इतना पैसा, किस लिए इतना कमा रहे हो, क्या जरूरत है? लेकिन नहीं, इंसान कभी सोचता ही नहीं कि सब यहीं का यहीं रह जाएगा। इसलिए अपने लिए उसके पास फुर्सत नहीं है। बाबा के बच्चे अपनी स्थिति को एक रस बनाने के लिए अपने लिए समय देते हैं, देते हो ना सब, क्या देते, अपने लिए समय है, तब तो आप समय निकाल करके यहां पहुंचे हैं। अपने को समझाना, अपने आप से बातें करना, अपनी उन्नति का ख्याल करना, हमारी कमाई हमारे साथ क्या जाएगा, कहते हैं खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे, लेकिन बाबा अपने बच्चों को कहता है बच्चे तुम भर्तू हो करके जाओगे, ऐसे हाथ नहीं जाओगे, ऐसे जाओगे, क्योंकि इस जीवन के अंदर कुछ पुण्य की कमाई जमा की हुई है साथ साथ, तो पुण्य की कमाई साथ जाती है इंसान के, अच्छे संस्कार उसके साथ जाते हैं, जिस प्रकार के संस्कार हमने बनाए हैं उसी प्रकार का जन्म शरीर मिलता, परिवार मिलता है। तो हम सब इस समय अपनी कमाई के लिए, अपनी स्थिति को एक रस रखने के लिए अपने को समय देते हैं, योग के लिए समय है, पढ़ाई के लिए समय है, सेवा के लिए समय है, जानते हैं यही अविनाशी कमाई हमारे साथ साथ जाएगी। तो एक रस स्थिति बनाने के लिए इस अविनाशी कमाई पर ध्यान दो। जिसके पास सब प्रकार के स्टॉक होते हैं वो बहुत निश्चिंत रहता है कि हमारे पास सब कुछ है। दुनिया वाले भी कहते हैं भाई कुछ भी हो जाए, पहले पहले कुछ समय पहले जब दादी जी थी तो जरा भी कहीं हलचल कोई होती थी, कोई समाचार देता था कि अभी ऐसा होने वाला है, तो फट से मुझे बुलाती थी कि सभी सेंटर्स को, सभी बाबा के बच्चों को एक सूचना भेजो। कौन से सूचना आती थी, 6 मास का स्टॉक अपने पास जरूर रखो, और उसमें भी कहती थी खाने पीने की सामग्री तो ठीक है लेकिन ये जरूर लिखना माचिस भी रखो, मोमबत्ती भी रखो, अंधेरा हो जाएगा फिर क्या करोगे, पानी का प्रबंध भी रखो। कई स्थानों पर विदेशों के अंदर पंप नहीं लगे थे, हेड पंप नहीं, नीचे की बोरिंग नहीं, दादी का ऐसा डायरेक्शन जाता था, और कई बार अचानक जब लाइट फेल हुई, पानी नहीं पहुंचा, तो उनको पता चला कि दादी का ये डायरेक्शन हमने नहीं माना। तो उसकी तैयारी अपने पास है कि अचानक कुछ भी हो तो हलचल में ना आ जाए, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉपर्टी स्थिति है, और अचानक ही ऐसे पेपर्स आते हैं, कई बार करोड़पति रोडपति बन जाते हैं, रोड पर ही आ जाते हैं। देख रहे हो, समाचार सुनते हो। जब कभी प्रकृति की हलचल ऐसी होती है, बड़े बड़े घर नष्ट हो जाते हैं, परिवार तितिर बितिर हो जाते, कुछ खाने योग्य नहीं रहता, पानी होते हुए भी कई बार पानी के बीच में है लेकिन पीने जैसा पानी नहीं होता। कलयुग के अंदर ये सब आपदाएं कहें, विपरीत परिस्थितियां कहें, अचानक आ जाए, मान लो, आह्वान हम नहीं कर रहे, आएंगी तो जरूर, लेकिन कोई भी अचानक ऐसी परिस्थिति आ जाए, उसमें हमारी स्थिति अचल अडोल एक रस हो, नथिंग न्यू। इसमें भी बाबा को हमने अगर कुछ बाबा के लिए किया है तो बाबा रिटर्न देने के लिए बंधा हुआ है। बाबा कहता, बच्चे जब खाने योग्य अनाज नहीं रहेगा, पीने योग्य पानी नहीं रहेगा, जब त्राही त्राही लोग करेंगे, ऐसे समय में भी मैं बच्चों का ध्यान रखूंगा जिन्होंने संगम पर बाबा के लिए इतना सब कुछ किया है। बाबा भी बन जाता है। अगर कोई ने बाबा को अपने घर में रोज भोग लगाया है, ऑफर किया है, तो ऐसा समय अगर आ गया तो बाबा उसको वतन में बुला करके भी सुबी रस पिलाएगा, भूखा नहीं सोने देगा, रिटर्न मिल जाता है। लेकिन वो विपरीत परिस्थितियों में स्थिति डगमग हो गई तो कहते, स्थिति बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, कुछ भी अंत समय में काम नहीं आएगा, न धन काम आएगा, न संबंध काम आएंगे, न वैभव काम आएंगे, कोई भी चीजें होते हुए यूज नहीं कर सकेंगे। होगा सब कुछ, मान लो आज सब आपने स्टॉक कर लिए हैं, लेकिन ऐसी दवाइयां हैं, ऐसी प्रकृति की हलचल हो जाए, जो हवा में भी जहर हो, खाने में भी जहर हो, पानी में भी जहर हो, क्या करेंगे? होते हुए भी उसको हम नहीं स्वीकार कर सकते, नहीं ले सकते, तो ऐसे समय में क्या बाबा याद आएगा या अंदर से हाय हाय होगी? अगर एक रस स्थिति किसी ने बनाई हुई है तो हर परिस्थिति को, हर पेपर को बहुत सरलता से सहन करते हुए वो पास हो जाएगा। इसलिए बाबा अपने बच्चों का अटेंशन खिंचवाते हैं, बच्चे बहुत काल का अभ्यास अंत समय में पास कराएगा। अचानक के पेपर में ऐसे नहीं उसी समय बात आई और पास हो गए, हमने बहुत काल अभ्यास नहीं किया है और हम समझे नहीं, हमने तो बहुत कुछ किया हुआ है, अगर अंतिम समय आ गया तो बाबा याद आ जाएगा, नहीं। एवर रेडी बाबा उसको नहीं कहता है, एवर रेडी, अचानक और बहुत काल, इन तीनों शब्दों का बड़ा गहरा अर्थ है। किसी से पूछो, आप एवर रेडी हो, कुछ भी आज हो जाए, अभी एक घंटे के अंदर ऐसा कुछ हलचल हो जाए दुनिया में, आप एवर रेडी हो, घर चलने के लिए तैयार हो, तो सब अंदर से ऊपर से कहेंगे, हाँ जी हम तैयार हैं, कुछ भी हो जाए। लेकिन वो अंतकाल जो है, जो इतना दर्दनाक भयानक दुनिया के लिए होगा, उसमें एक सेकंड में आत्मा इस शरीर से न्यारी होके बाबा के पास जा सके, कोई भी आकर्षण, न मित्र न संबंधी, वो एक स्वर्ग में एक सीट खाली है, उसका नाटक देखा था आप लोगों ने, स्वर्ग में एक सीट खाली है, कहते हैं एक बार भगवान को नारद कहते हैं, हे भगवान, दुनिया में बड़ा दुख है, सब बहुत परेशान हैं, बहुत अशांत हैं, बहुत दुखी हैं, आप अगर छुट्टी दो तो इनको इस दुख से छुड़ा करके मैं स्वर्ग में ले आऊं। भगवान ने कहा, सीटें तो सब फुल है लेकिन एक सीट खाली है, तुम जाओ दुनिया के अंदर, जो आना चाहे, जो बहुत दुखी हो उसको ले आओ। तो कहते नारद जी हरेक के पास गए, एकदम बुजुर्ग के पास भी गए, एकदम दुखी रोगी के पास भी गए, सबके पास गए, जिससे पूछे वो कहे अभी मुझे ये काम बाकी है, अभी मुझे ये काम बाकी, तुम मुझे छोड़ दे। बुढ़िया भी कहती है मेरे पोते आएंगे, उनको मैं शादी कराऊंगी, उसके पोते को मैं देखूंगी, उसको दूध पिलाऊंगी, उसके बाद मैं जाऊंगी, अभी तुम मेरे पीछे क्यों लगा है। इतने दुख की दुनिया में भी नारद को एक भी सीट नहीं भर सका वो, सबके पास गया लेकिन कोई से भी स्वर्ग में चलने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो आजकल की दुनिया के अंदर भले दुख है, अशांति है, लेकिन कोई ये नहीं महसूस कर रहा है ये दुनिया मेरे काम की नहीं है। हम बाबा के बच्चे ही महसूस करते हैं और अंदर से तैयार हैं, हैं सभी, कुछ भी हो जो है तैयार वहां तो उठाओ देखो तो कितने तैयार हैं। अच्छा बजाय सीटी बाबा ऐसे भाई लोग उठाया, कुमारों ने नहीं उठाया, अभी इनके अंदर कुछ आशाएं हैं, हैं? कुमारों के अंदर अभी आशाएं हैं, ये करना है ये करना, अभी तुम्हारी उम्र है, अभी तुम बहुत कुछ कर सकते हैं। बाबा कहता कर सकते हो जब तक है खूब करो, मना नहीं है, लेकिन अंदर से वृत्ति उपराम रहे, अनासक्त रहे, किसी दिन भी बुलावा हो हाँ बाबा मैं तैयार हूं, इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। कहते एक सेठ जी बड़े समझदार थे, कहानी सुना देता हूँ थोड़ा रमणीक है। कहते एक सेठ जी बड़े समझदार थे, उन्होंने कहा सोचा कि कलयुग के अंदर तो राम नाम लेने से ही मुक्ति हो जाती है। 5:30 बज गया, तुम अपना गीत बजाओ भाई, ये तो मोबाइल जरूर बजेगा, ये मोबाइल वाले छोड़ेंगे नहीं। तो सेठ जी की बात मैं आपको सुना रहा था, बड़े होशियार थे, उन्होंने कहा कि जब अंत में भगवान का ही नाम लेने से मुक्ति मिल जाएगी तो अंत समय तो बच्चों की विशेष याद आती है, इसलिए उनको जो भी बच्चे हुए, 3 बच्चे हुए, तीनों का नाम भगवान के नाम पर रख लिया। एक को रख दिया श्री कृष्ण, एक का मोहन, एक का राम। ऐसे ही बच्चे बड़े होते गए, राम मोहन और कृष्ण को देख देख के खुश होता रहा, अंत में याद तो यही आएंगे। तो जब अंत समय आई, बिस्तर पर लेटे लेटे याद करने लगा राम कहाँ है, तो सब इकट्ठे हो गए आकर के, परिवार वाले सदस्य आ जाते अंत जब होती कोई की, तो वो बेचारा याद कर रहा था राम कहाँ है, तो सामने से बोलता बाबूजी मैं तो आपके बिल्कुल पास में ही बैठा हूँ। बोला अच्छा कृष्ण कहाँ है, तो भी कहता बाबूजी मैं भी यही हूँ सामने ही हूँ। अच्छा मोहन कहाँ है, तो वो भी बोला मैं भी यही खड़ा हूँ बैठा हूँ। बस तीनों कैसे देखता है देखता है, देखते देखते इतना गुस्सा आया जोर से, तुम तीनों इधर हो तो दुकान में कौन है, और दुकान शब्द याद आई और प्राण तन से निकल गए। अंत समय में भगवान याद आएगा, कौन याद आया, दुकान याद है, क्योंकि बहुत काल तो बुद्धि में दुकान थी, भगवान की याद तो थी नहीं बहुत काल। इसलिए बाबा हम बच्चों को जो बहुत काल कहता है ना, अंत समय में बाबा तभी याद आएगा जब बहुत काल से प्रैक्टिस है। इसलिए युवा रेडी माना बहुत काल का अभ्यास, इस देह से ऐसे डिटैच होने का अभ्यास करो, कुछ भी हो जाए तो हाय हाय नहीं निकले, कुछ भी नुकसान हो जाए, क्योंकि सब हमने बहुत पसेरा बहुत विस्तार किया है, और जब ऐसी समय आती है तो आत्मा अटक जाती है। अभी पता क्या होता है, कई बड़े अच्छे अच्छे भवन बनाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे रिट्रीट सेंटर बना लेते हैं, बहुत संपत्ति इकट्ठी कर लेते हैं, बड़े अच्छे सेंटर्स बना लेते हैं, और आयु तो पूरी होनी है सबको, जाना तो ही, तो जाते जाते जब बिस्तर पर जाते हैं उन प्राण बहुत काल तक निकलते नहीं, आत्मा जाती नहीं छोड़ करके, कहते हैं भाई इसको कुछ इच्छा रह गई है इसलिए ये नहीं जा पा रही है, एक बहन थी, उसकी इच्छा रह गई, रिट्रीट सेंटर बन रहा था, वह अधूरा था, बहुत उसकी लगन थी मैं बाबा का बड़ा रिट्रीट सेंटर बनाऊं। और कैंसर हुआ, थोड़े समय तक उसको बीमारी वो बढ़ती गई, अंतिम स्टेज आ गई, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, अब उसकी बुद्धि और रिट्रीट सेंटर, शरीर ही नहीं छोड़े। एक दिन अचानक बोला शरीर छूट गया, सब पहुंच गए जाके, मधुबन से भी आ गए, दूसरी जगह से भी बड़ी बड़ी बहनें इकट्ठी हो गई, और फिर आत्मा आ गई, फिर आ गई, वो जाए ही नहीं, बोला इससे फीता कटवा दो, ओपनिंग करवा दो, रिट्रीट सेंटर की चली जाएगी। और सचमुच वही ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा करके उस आत्मा को शरीर घुमाया से रिट्रीट सेंटर में, उसे फीता कटवाया, उसके बाद उसे छोड़ा। इतनी दगे हैं, इतनी फंसी हुई आत्माएं हैं, संबंधों में है, साधनों में है, सुविधाओं में है। अब बाबा कहता बच्चे याद रखो, जाना है, इसीलिए कहता ना कि अंत समय आ जाए तो ये नहीं, ये रह गया, ये काम रह गया, ये चीज रह गई, यहाँ पर मैंने पैसा फंसाया था, उसको उधार दिया था, उसके पास इतना है, तो आत्मा निकलेगी जल्दी। तो ऐसे अगर कोई हिसाब किताब, कोई ऐसे बंधन जो आत्मा को बार बार खींचते हैं, उनसे किनारा करो, पहले चेक करो उसको। चेकिंग तो सहज है ना, कहते हैं नाव में बैठा है, समझता मेरी नैया चल रही है, हिलती है डुलती है, चप्पू चलता रहता है, लेकिन सवेरे उठ के देखता है, अरे तो कहीं गए नहीं, हम तो वहीं खड़े हैं, रात भर हम चलाई नाव, ये तो देखा नहीं कि वो जो बंधा हुआ लंगर था वो तो खोला ही नहीं उसने। तो आजकल भी कई इस नैया में बैठ तो गए हैं, लेकिन लंगर खोलते नहीं है, आगे बढ़ती नहीं नाव, हिलाते रहते हैं चप्पू, जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, स्वर्ग बहुत नजदीक दिखाई दे रहा है, सोचते रहते हैं, लेकिन जहाँ के हैं वहीं खड़े हैं, आगे बढ़ते नहीं। क्यों? क्यों कहीं न कहीं बुद्धि फंसी हुई है, धन में, साधनों में, संबंधों में, मित्रों में, कहीं न कहीं बुद्धि लगी है, लटकी है, बातें देखते रहते हैं, कहते हम तो आगे बढ़ रहे हैं, उन्नति हो रही है, बहुत अच्छा हमारा पुरुषार्थ है, लेकिन कहीं न कहीं बुद्धि लटकी है, अटकी है, तो वो आगे बढ़ने नहीं देती। हम सब अपनी एक रस स्थिति बनाने के लिए सब बंधनों को चेक करें। कुछ भी हो जाए संसार की, ऐसे हो जाए, होना तो ही, मान लो अचानक हो जाए, बाबा मैं आपके पास उड़ के आ रहा हूं, कोई भी चीज आकर्षण न करे, कोई भी जहां बंधन होगा, जहां पर कोई खिंचाव होगा। योग में भी आप बैठते हो आधा घंटे के अंदर, देखो चेक करो, एकदम अलग होकर के देखो ये कहां जाता है, ये कहां जा रहा है, किधर जा रहा है, क्या चाहिए इसको। कहीं तक देखते नहीं है, सोचते रहते हैं, आधा घंटा एक घंटा योग में बैठ करके भी पूरा टाइम वहीं घूमते रहते, बैठे हैं इतने याद में, अच्छे वातावरण में, फिर भी बुद्धि स्थिर नहीं होती, एकाग्र नहीं होती, स्थिति एक रस कैसे बनेगी। एक रस स्थिति बनाने के लिए तो योग एक रस चाहिए, एक वृत्ता योग चाहिए, जिसका एक वृत्ता है, वृत्ति में एक बाबा, दूसरा ना कोई, उसकी स्थिति एक रस है। कुछ नहीं चाहिए मुझे, कोई आकर्षण नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है, कहीं पर भी बुद्धि नहीं भटक रही है। आप चेक करो योग के अंदर, तो स्पेशल चेक कर सकते हो, एक घंटा हम बैठते हैं, कितना समय मन बुद्धि एकाग्र होता है, स्थिर होता है। अगर नहीं हो रहा है तो कौन सा बंधन आत्मा को अपनी तरफ खींच रहा है। कई बार पुराने संस्कार हैं, कोई ऐसे कर्म किए हुए हैं, कोई ऐसा हिसाब किताब है, वो खींचता है, वो भी खींचता है। साधन सुविधाएं बाद की चीज है, लेकिन अपने निजी पुराने संस्कार भी खींचते हैं। कुछ ऐसे कर्म हुए हैं, विकर्म हुए हैं, कोई के साथ ऐसा हिसाब किताब बनाया, कोई से कर्जा लिया है, वो कर्जदार तो आज की दुनिया में मर्ज कर देता है। किसी को दिया है या किसी से लिया है उधार, क्या होगा। एक बात आप सब जरूर ध्यान में रखना, बाबा के बच्चे हो इसलिए सुनाता हूं। हमारा एक परिवार है, और इस परिवार के अंदर हम सब एक दूसरे के हितैषी हैं। कभी कोई को मदद की जरूरत होती हम करते हैं, बाबा भी छुट्टी देता, बहुत अच्छा है, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। लेकिन इस परिवार के अंदर ये भावना रख कर के किसी को अपना पैसा देना, इसका ब्याज मिलेगा, ये रिटर्न कर देगा, ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन वो अगर नहीं मिलता है थोड़े समय के बाद, तो आपस के संबंध बिगड़ जाते। बाबा के प्रति परिवार के प्रति भावनाएं टूट जाती। वो कहते ये व्यक्ति आपके इस संस्था में धब्बा है, ये जब तक आएगा तब तक मैं भी नहीं आऊंगा। किनारा कर लेता है। क्यों? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोगों को बहुत अपने को अनन्य दिखा करके लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं और भावना में आकर के हम उनको मदद कर देते हैं, सहयोग दे देते हैं। जरूरत इसकी जरूरत है बेचारे की, ये बाबा का बच्चा है कहाँ जाएगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि ऐसे कई हैं बहुत सेवा देते हैं, यज्ञ में बहुत मदद करते हैं और उनको फिर बाबा के सब बच्चे समझते हैं तो बहुत अनन्य है, बहुत अच्छा है, बहुत सेवाधारी बच्चे को, इसको बेचारे को जरूरत पड़ी है तो हम इसको 5 लाख 10 लाख दे दें तो क्या फर्क पड़ता है, रिटर्न कर देगा। और इसी भावना से आकर के वो इकट्ठा करता रहता है, एक से लेता है, दो से लेता है, तीन से लेता है और जब 2-4 करोड़ इकट्ठा कर लेता है गुम हो जाता है, पता नहीं कहाँ गया। अब ऐसे समय पर कहो कि हमने तो बाबा में विश्वास रखा था, परिवार में विश्वास रखा था, वो तो बहुत सेवाधारी था, बहन जी उसकी एड्रेस दे दो मुझे। अब बहन जी क्या करेंगे, कौन एड्रेस आपको उसकी देगा? क्यों नहीं आप सावधान रहते हो? कोई की बुद्धि का पता नहीं कब फिर जाए। सन्यासियों ने ऐसे थोड़ी कहा ये पैसा माया है, माया के पीछे कोई चक्री में आ जाए। इसलिए अगर कोई को मदद करनी भी है तो अपने पांव से, अपनी बुद्धि से करो, जितनी करना है करो, लेने की रिटर्न वापस आ जाएगी, उसकी भावना से नहीं करो, नहीं तो कहीं ना कहीं दुख और धोखा। कोई भी देगा आजकल का पता नहीं चलता है कौन कैसा व्यक्ति है। कहते हैं भगवान को पहचानना सहज है लेकिन इंसान को पहचानना बहुत मुश्किल है, इसलिए बहुत समझ के चलना है, नहीं तो कहीं भी धोखा मिलेगा। बुद्धि सारा दिन ज्ञान योग की बजाय उसी की याद आती रहेगी। दो ही चीजें हिसाब किताब बनाती हैं। कलयुग में हिसाब किताब चुकतु करने के लिए हम बाबा के बने हैं। अंतिम समय है, हम सबको अपने पूरे हिसाब किताब यहाँ चुकतु करने हैं। कुछ योग से करने हैं, कुछ भोग के करने हैं, कुछ आपस में संस्कारों के टक्कर में आके करने तो यही है ना, होने हैं सबके। लेकिन हिसाब किताब चुकते होते होते कहीं बन जाए तो कैसे बनता है? यदि आप किसी पर विशेष प्रभावित हो गए, बहुत अच्छा लगता है, ये व्यक्ति बड़ा अच्छा है, बहुत गुणवान है, बहुत सहयोगी है, बहुत स्नेही है, उसके प्रभाव में आ गए और प्रभाव डाल डाल करके वो अपनी तरफ खींच ले, हिसाब किताब बन जाएगा। कोई कितना भी अच्छा है, मान लो बाबा कहता उसके अंदर बहुत सारे गुण है, आप विशेषताएं देख रहे हो अच्छी बात है, लेकिन ये प्रभु देन है, भगवान ने इसको दिया है, मैं उसको देखूं ना दाता को, इस व्यक्ति में क्यों आकर्षित हो जाऊं? नहीं तो कहीं कहीं उसी के नाम रूप में, परसों नरसिंह बाबा कहे थे ब्रह्मा बाबा के भी नाम रूप में नहीं फंसना, कई बच्चे इसमें भी लटक जाते हैं। अब यहां तक बाबा हमको समझ देता है कि इसमें भी नहीं फंसो और हम देहधारियों को देखते हैं भाई ये बड़ा अच्छा है बड़ा अच्छा है, उसके चक्कर में आ जाते हैं, फिर वो कुछ भी कह देता है, कुछ भी कर लेता है, ठगी तो बहुत है। इसलिए अगर प्रभावित हो गए तो हिसाब किताब बन जाएगा, और अगर कोई बहुत खराब लगता है, नफरत आती है, देखने से ही विकल्प संकल्प विकल्प चलने लगते हैं, वैर भावना है, ईर्ष्या है, द्वेष है, तो क्या होगा? उसकी भी याद आएगी, जब योग में बैठोगे तो याद आएगी। इसलिए बहुत संभलना है कि न किसी से दुश्मनी ना किसी से खास दोस्ती। कहते हैं ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। अगर वैर है तो भी हिसाब किताब बनेगा और विशेष दोस्ती है तो भी परचिंतन होगा, प्रदर्शन होगा, बैठ जाएंगे। कुमारों की बात आई तो कहने लगे, कुमार कहते हैं हम एक पांडव भवन बनाए, बहुत अच्छी बात है बनाओ, लेकिन अगर उसमें एक भी नेगेटिव होगा तो सारे वातावरण को खराब करेगा। संगठन हो तो एक मत वाला हो, उन्नति वाला हो। हमेशा ध्यान रखो पर चिंतन पतन की जड़ है, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। अगर कोई भी पर चिंतन व्यर्थ चिंतन परिवार के बारे में या ज्ञान के बारे में बाबा के बारे में उल्टी सुलटी बातें सुनाता है, उसका संग ठीक नहीं है, वो हमारा पतन करेगा। इसलिए एक रस स्थिति बनाने का साधन है स्वचिंतन। कहते अपनी घोट तो नशा चढ़े, अपनी घोट, दूसरा घोट के पिलाएगा तो नहीं चढ़ेगा। खुद अपने आप से बात को अपने आप को नशा चढ़ाओ, मुझे बाबा ने इतने सारे साधन इतने अच्छे सामान दिए हैं, उन सामान की सीट पर मैं बैठूं, कोई मान दे या न दे, कोई पूछे या न पूछे, स्थिति एकरस बन जाएगी। अगर अपेक्षा रखोगे कि यहाँ पर हमको मान मिलना चाहिए, यहाँ सीट मिलनी चाहिए, यहाँ हमने इतना सहयोग दिया था, इतना मदद की थी, तो उस समय आपको न मिला तो स्थिति बिगड़ जाएगी। एकरस स्थिति बनाने के लिए ध्यान रखना, नेकी कर दरिया में लोस, दरिया में डाल दे, रिटर्न लेने की इच्छा नहीं रखो। नेकी करो, अच्छे काम में मदद कर दो, लेकिन करने के बाद ये नहीं इसकी रिटर्न में कुछ तो मुझे पूछा जाए। अगर जरा भी आशा अपेक्षाएं होंगी तो इंसान को अपेक्षाएं कभी एक रस स्थिति में रहने नहीं देंगे। स्थिति एक रस रखनी है तो अपेक्षाएं छोड़ दो, आशाएं छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो बाबा ने दिया है बहुत कुछ दिया है, मैं उसको सबके सहयोग में सबको मदद करूं। रिटर्न लेने का अगर इच्छा है, अपेक्षा है और न मिला तो स्थिति बिगड़ जाएगी। इसलिए बहुत संभल करके ऊंची मंजिल के हम राही हैं। एक रस स्थिति बनानी है, ऊंची मंजिल पर पहुंचना है। वैसे भी कहते हैं अगर कहीं मंजिल पानी होती है तो स्पीड को बढ़ाना पड़ता है, स्पीड को बढ़ाना पड़ता है तब मंजिल मिलती है। समय कम है, स्पीड तेज हो तब हम मंजिल पर पहुंच सकेंगे। लेकिन तेज स्पीड वालों को ध्यान किन किन बातों का रखना पड़ता है? मान लो आपके पास साधन है और आपको प्लेन पकड़ना है, आप समझते हो एक घंटे का सफर है और ट्रैफिक में हम थोड़ा स्लो हो गए हैं, जहां ट्रैफिक नहीं होगी वहां आप स्पीड बढ़ाओगे, किस बात का ध्यान रखोगे? एक तो ब्रेक बहुत पावरफुल होनी चाहिए, नहीं तो कहीं कहीं ठोक दोगे गाड़ी। दूसरा, पेट्रोल आपके पास पूरा होना चाहिए अगर स्पीड ज्यादा है तो। तीसरा, हैंडल पावर भी अच्छा होना चाहिए मोटर्स को, गाड़ी को। कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है स्पीड को बढ़ाने के लिए। भाई ब्रेकर आएगा तो मुझे ब्रेक लगानी जरूरी है, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। एक भाई अपनी मम्मी को, एक बहन थी अपनी मम्मी को बिठा के स्कूटर पर जा रही थी, डॉक्टर थी, अच्छी बहन थी, बाबा की बहुत अनन्य बच्ची थी, मम्मी पीछे बैठी थी, स्कूटर पर जा रही थी, अपने नशे में थी, स्पीड से जा रही थी, ब्रेकर आया, मम्मी गिर गई, उसको पता नहीं चला, वो पहुंच गई जाके मम्मी पीछे ही नहीं, वो हॉस्पिटल में पड़ गया, उठा करके लोग ले गए और वो चली गई अपने हॉस्पिटल में। फिर बाद में आई, देखा रे इतना चोट लग गई बेचारी के, गिर गई, इतना रोए, मेरे से ऐसी भूल हो गई, मेरे से हो गया। अरे भाई तेरा ही मम्मी थी, तुम चला रही थी, कम से कम ध्यान तो रखती, मैं कैसे चला रही हूँ गाड़ी। स्पीड में तो कई प्रकार के एक्सीडेंट होते हैं, इसलिए स्पीड अगर हमको तेज करनी है तो कम से कम अगर कोई ऐसी बातें आ जाए, मान सान नाम मान की कोई भी, तो थोड़ा स्पीड को स्लो कर लो। स्पीड स्लो करके धैर्यता से शांति से बाबा के साथ बातें करके ब्रेकर को क्रॉस कर लो। आया है, क्यों आ गया, इतना ऊंचा क्यों बना दिया, ये सरकार को भी अकल नहीं है, फलाने को भी गाली देना शुरू कर देता है। पेपर आया, परिस्थिति आई, ठीक है, सबके सामने आती, मेरे सामने नहीं आई, और ब्रेकर तो सबके सामने आता है ना। आया है, ठीक है, थोड़ा ब्रेक स्लो किया, गाड़ी स्लो किया, ब्रेक लगाई, फिर आगे बढ़े। आगे बढ़ने का मतलब है नहीं ब्रेक लगा के खड़े कर दो, भाई ब्रेक है ना हमारे पास, तो ब्रेक इसलिए तो नहीं है कि खड़े हो जाओ। ड्रामा की अगर ब्रेक हमारे पास है, बहुत अच्छी ब्रेक है ड्रामा की, लेकिन कई लोग लगा करके कहते हैं ड्रामा में होगा तो कर लेंगे ना, बाबा तो कहता है जो कलप पहले हुआ वही होगा, नथिंग न्यू, कोई नई बात तो है ही नहीं, मैं क्यों इस माथा मारी, क्यों अमृत वेले उठ के अपना टाइम वेस्ट, योग तो लगता नहीं है, ड्रामा में होगा तो पास हो जाएंगे, हो जाएंगे। ड्रामा में होगा मधुबन जाना होगा तो चले जाएंगे, नई टिकट लेना, नई बुकिंग कराना, पहुंच जाएंगे। कि ड्रामा में तो है, निमंत्रण तो मिला है, बाबा के पास जाना है, मिलना है, तो उसके लिए ड्रामा में वो भी तो है कि इसको सिस्टम है, उस सिस्टम को तो फॉलो करना पड़ेगा कि ऐसे ही पहुंच जाओगे जाके, जाने के लिए तैयारी करोगे, कपड़े सिलाई करोगे, कुछ साधन लोगे, टिकट बुक कराओगे, फिर घर से निकलोगे, दो तीन दिन का सफर है तो उसके लिए रास्ते का साधन लोगे, वो सब तैयारी के बिना आप मधुबन पहुंच जाओगे? अगर जा रहे हो सब साधन लेकर के और बीच में कोई ऐसी बात आ गई, ट्रेन हड़ताल हो गई, कोई कारण से नहीं चली, आगे नहीं बढ़ी और टाइम पर आप नहीं पहुंच सके, उसके बाद कहोगे तो चलो नथिंग न्यू, ये तो ड्रामा में ही था इसलिए नहीं पहुंचे, वो तो चलो ढाल हो गई आपकी, आपके स्थिति को एक रस रखने के लिए वो ढाल हो गई। लेकिन पहले से ही ड्रामा में होगा तो चले जाएंगे, बाबा की मर्जी होगी तो पहुंच जाएंगे। कई लोग ज्ञान को बड़े उल्टे रीति से यूज करते हैं, इसलिए बाबा कभी कभी कहते हैं महामूर्ख देखना हो तो यहां देखो, ये महामूर्ख की निशानी है कि वो अपने आप को बहुत समझदार समझता है, बाबा की बात को भी बहुत अच्छी ढंग से बाबा को सुना देता है, बाबा आप इतने तो आठ ही तो पास होंगे ना, बाकी तो सबको हंटर लगने वाले हैं, तो हम कहां आठ वाले हैं, हम तो पीछे आए हैं, हमको से तो गलतियां होंगी। बाबा की बात को ही बाबा के आगे रख देते, बाबा कहता बच्चे ज्ञान को यथार्थ रीति से समझो, रेस चल रही है और इस रेस के अंदर कोई भी नंबर आगे जा सकता है, पास भले आठ होंगे। एक बार बाबा ने कहा चलो आठ की माला, 108 की माला विजयी माला है, आप रेस तो करो, पास होकर के दिखाओ, फर्स्ट डिवीजन है, कई लोग पास हो जाएंगे। एक लड़ी की नहीं, मैं अनेक लड़ियों की माला बना लूंगा, तुम पास होके तो दिखाओ। लेकिन वो बाबा की बात को लेकर के कहेंगे भाई हमारे बस की बात तो नहीं है, कैसे स्थिति एक रस बनेगी? अगर सचमुच एक रस स्थिति बनानी है तो बाबा के ज्ञान को यथार्थ रीति से समझ करके इस ज्ञान के फाउंडेशन को मजबूत करो। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये चार सब्जेक्ट बाबा ने पढ़ाई है, चारों सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट है, लक्ष्य और उद्देश्य। क्या लक्ष्य है ज्ञान की सब्जेक्ट का? लक्ष्य क्या है? ज्ञान किस लिए इतना सारा दे रहा है जबकि कहता है सत्युग में भी नहीं होगा, ये अभी ही खत्म हो जाएगा, अंत समय में ज्ञान पूरा हो जाएगा, प्राय लोप हो जाएगा। जी क्या बोल रहे हैं? ज्ञान कमाई है इसलिए देता है। समझ किस लिए मिल रही है? समझदार किसको कहते हैं? ज्ञान की हर पॉइंट को आप चेक करो, आत्मा का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, पुनर्जन्म का ज्ञान है, कर्मों का ज्ञान है, घर का ज्ञान है, जो भी ज्ञान है जिसके लिए हम दूसरों को सब समझाते हैं, प्रदर्शनी में 7 दिन का कोर्स देते हैं, इस पूरे ज्ञान का एसेंस जो है वो है निर्बंधन जीवन। ज्ञान है और बंधन में वो व्यक्ति बंधता जा रहा है, एक बंधन छोड़ता है दूसरे बंधन में बंध जाता, उसको ज्ञानी नहीं कहा जाता। ज्ञानी माना जिसकी बुद्धि में समझ है कि अब अंतिम समय है, वापस जाना है, जाने के समय सब कुछ समेटना है, पुण्य की पूंजी जमा करनी है, कहीं हिसाब किताब नहीं बनाना है, जो बने हुए हैं उनको ज्ञान योग से चुक्तु करना है, उसको ज्ञानी कहते। बाकी ज्ञान आत्मा परमात्मा का किस लिए बाबा ने दिया? दूसरों को सुनाने के लिए क्या? अगर ज्ञान है तो अपने बंधनों को चेक करो, कहीं पर भी बुद्धि अटकी लटकी हुई तो नहीं है। समझदार वो है जो कहीं भी दुख और धोखा न खाए, जो कहीं भी बंधन में न बंधे। अगर मेरे पास बहुत ज्ञान है और मैं हर जगह ठोकर खा रहा हूं तो ज्ञान की रोशनी किस लिए? लाइट किस लिए? ज्ञान लाइट है, ज्ञानी तो आत्मा एक लाइट हाउस का काम करती है, दूसरों को भी रास्ता दिखाती है, लेकिन खुद ही दुख और धोखे में फंसा हुआ तो ज्ञानी कैसा है? तो अगर एक रस स्थिति बनानी है तो चारों सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट को समझ के चलो। ज्ञान है तो निर्बंधन है, योग लगा रहे हैं तो आत्मा की मैल हटनी चाहिए, वो सतो प्रधान स्वच्छ पावन बननी चाहिए, इन कर्मेंद्रियों पर जीत होनी चाहिए। अगर आप योग खूब लगा रहे हो, कर्म इंद्रियों की कंट्रोलिंग पावर नहीं है, गुस्से को भी जीत नहीं पा रहे हो, एक एक इंद्रिय आपको धोखा देती है, तो योगी कैसे? वो तो भोगी लोग हैं। अगर सचमुच सच्चे योगी बाबा के बच्चे हो तो इन कर्मेंद्रियों को देखो, ये शीतल बनी है। योगी वो है जिसकी काया शीतल है। अगर चंचलता नहीं जा रही है, आवेश आवेग आलस अहम बहम समाप्त नहीं हो रहा है, तो योग किस लिए कर रहे हो? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? योग कर रहे हैं तो कम से कम कुछ तो योग की रिजल्ट प्रैक्टिकल दिखाई दे। कर्मेंद्रियां शीतल हो जाए, संस्कार चेंज हो जाए, आत्मा स्वच्छ बन जाए, दिखाई दे कितनी पवित्र है, शुद्ध है, निर्दोष है, कोई इसके ऊपर असर नहीं हो रहा है, सत्व प्रधान है। सत्व प्रधान जब सातों गुणों की संपन्नता होती तब वो कहलाती है। तो आत्मा के जो निजी सात गुण हैं, उन सातों गुणों की परसेंटेज को चेक करते रहो। ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्यार, सुख, आनंद और शक्ति, ये सातों गुणों को चेक करो कि कहां तक इनमें वृद्धि हुई है। ज्ञान माना समझ, समझ माना ब्रेन ठीक काम करता है, समय पर निर्णय देता है। पवित्रता मेरे नयन मुख कमल की तरह न्यारे प्यारे पवित्र स्वच्छ बने हैं। शांति माना मेरे फेफड़े की सांस लेने का तरीका ठीक है, बहुत ज्यादा एकदम उतावले तो नहीं हो जाते, बहुत फास्ट सांस तो नहीं चलने लगती। प्रेम एक से है, दिल एक में लगा हुआ है, दिल के टुकड़े टुकड़े तो नहीं है। सुख स्वरूप स्थिति है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, जैसे खाने पीने से सुख मिलता है ऐसे प्रभु मिलन से पेट भरा हुआ है, खुशी का खजाना खुराक बना है। ये हार्मोन्स आनंद स्थिति से बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। शक्ति संपन्न ये शरीर मजबूत है, अगर नहीं है तो इन गुणों को बढ़ाओ। यही गुण कम होने से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं, और जितना इन गुणों को हम बढ़ाते जाते हैं आत्मा गुणवान बनती जाती है, ये काया निरोगी हो जाती है, सत्वगुणी बन जाती है। योग द्वारा इन सातों गुणों में वृद्धि होनी चाहिए। अगर ये वृद्धि नहीं हो रही है, माना योग कहीं अलग लग रहा है, बाबा में नहीं लग रहा है, तो आत्मा सत्वगुणी योग से बने, सत्व प्रधान बन जाए, पावन बन जाए, इंद्रियां शीतल हो जाए, मन कंट्रोल में आ जाए, वो योगी है। धारणाएं अगर अच्छी हैं तो देव पद की प्राप्ति की जा सकती है। धारणा कहते हैं धर्म परिये, धरत परिये धर्म न छोड़िए। धरत परिये माना मरना भी पड़े तो भी धर्म नहीं जाना चाहिए। अगर धारणाएं हमारी मजबूत हैं, कुछ भी सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, कुछ भी हो जाए हिलेंगे नहीं, धारणा वाले कभी हटते नहीं है, मर जाएंगे लेकिन हटेंगे नहीं। धारणाओं के लिए सहन तो करना ही पड़ता है। कोई पवित्र बनता है, कितने बेचारे अपोजिशन होती है। इसलिए धरत पर ही कुछ भी हो जाए, प्रतिज्ञा की है मरेंगे मिटेंगे लेकिन हटेंगे नहीं। और सेवा से तो राजधानी बन रही है, जो सेवा करता है उसको बहुत दुआएं मिल जाती हैं, जिसकी सेवा की हो बहुत स्नेह मिलता है, उसे शक्ति मिलती है, प्रजा बनती है। तो इसलिए चारों सब्जेक्ट का बैलेंस रखने वाला अपनी एक रस स्थिति बना सकता है। तो बाबा ने हम सबको एक रस स्थिति बनाने का बहुत सुंदर ज्ञान दिया है, समझ दी है, ब्रेक दी है। ज्ञान की ब्रेक बहुत पावरफुल हो, हैंडल भी माना मोड़ने की शक्ति, कुछ भी हो जाए अपने आप को मोड़ लो। कहते हैं रियल गोल्ड वो है जो मोल्ड हो जाता है। अगर सच्चाई है और कहे मैं तो सच्चा हूं, मुझे तो झूठ बोलता है इसलिए सहन नहीं होता, तो वो सच्चा कहाँ है? सच्चा है तो अपने आप को मोल्ड कर लेगा, ठीक है तुम ठीक है ना, तुम ठीक रहो, अपने आप को मोल्ड कर लो, झुक जाओ। और पेट्रोल ज्ञान योग का जिसके पास है, स्पीड कितनी भी हो कभी भी खड़ा नहीं होना पड़ेगा। अगर कम दिखाई देता है तो स्टेशन है, जाओ सेंटर पर, जाओ योग में, बाबा के कमरे में बैठ जाओ, पेट्रोल भर लो, कभी भी कोई बात आएगी, कोई भी पेपर आता है तो सबके सामने, ऐसा कोई नहीं कहेगा हम जब से बाबा के बने हैं मेरे आगे कोई पेपर ही नहीं आया। हर प्रकार के कोई न कोई नए नए प्रकार से भी पेपर अचानक आते हैं, विघ्न आते हैं, लेकिन कोई भी बात, कोई भी विघ्न हमारी स्थिति को बिगाड़ न दे, एक रस रहे, खुशनुमा रहे, अचल अडोल रहे, इसके लिए अटेंशन, चारों सब्जेक्ट पर फुल ध्यान, पास हो जाएंगे। नथिंग न्यू, कोई भी नई बात नहीं है, हमने कल्प कल्प विजय प्राप्त की है, फिर से विजयी बन करके दिखाना है। कभी भी छोटी दिल नहीं करना। दो बीमारियां बहुत फास्ट फैल रही है ना, कौन सी? एक कैंसर की और एक हार्ट की, बहुत फास्ट फैल रही। समाचार सुनो, फलाने को कैंसर हो गया, फलाने को कैंसर हो गया, फलाने कैंसर। कारण तो खान पान है और प्रदूषण है। खान पान के द्वारा भी आज कैंसर जैसी भिन्न बीमारियां हो रही हैं। मालूम होगा आपको, एक जलंधर है ना पंजाब, बहुत अनाज पैदा होता है, सबसे नंबर वन अनाज का क्षेत्र पंजाब माना गया है, और जो वहां खान पान है अभी उन किसानों ने अपने खेत का खाना बंद कर दिया है, वो एमपी से मंगा के खाते हैं, क्योंकि वहां के खाने में पानी में इतना जहर घुस गया है, ये फर्टिलाइजर कीटनाशक डाल डाल करके, जो बिल्कुल विषैला खाना हो गया है। वो बेचेंगे बाजार में, वही जाएगा, पैसा तो चाहिए, लेकिन अपने लिए नहीं खाएंगे, क्योंकि वो कैंसर कर देता है। तो एक जलंधर से स्पेशल ट्रेन बीकानेर में आती है, बीकानेर राजस्थान में है, वहां एक कैंसर हॉस्पिटल है, तो ट्रेन का नाम लिखा है कैंसर स्पेशल। हमारे ब्राह्मण परिवार में ये बीमारी न फैले उसका बहुत ध्यान रखना। अगर जरा भी अशुद्ध भोजन, माना वो भोजन नहीं, पर चिंतन वाला, पर दर्शन वाला, इधर उधर का जहरीला भोजन अंदर जा रहा है तो कैंसर कर देगा, गांठे बना देगा। कोई भी ऐसी वैसी बातें सुनाए मुझे नहीं सुननी है, मुझे भोजन नहीं करना। और दूसरा अहम और बहम, अहम भी सूक्ष्म में अगर रहता है, मैं कुछ हूं, तो भी कैंसर की बीमारी कर देता, वो भी गांठ है, पता नहीं चलता, लास्ट स्टेज पर आता है तो पता चलता मरने पर आ गए। इसलिए कभी भी ऐसी बीमारी से ग्रसित न होना, बाद बीच बीच में चेक कराते रहो, अगर कभी कुछ हो ना, मन में उदासी आए, खुशी गायब हो जाए, उमंग उत्साह खत्म हो जाए, तो चेक कराओ कहीं कुछ हो तो नहीं गई गांठ। परिवार के स्नेह में कमी आ जाए, मुरली अच्छी न लगे, ब्रह्मा भोजन अच्छा न लगे, चेक करा लो कहीं गांठ तो नहीं बन गई है। और उमंग उत्साह अगर सेवा का नहीं आता, दिल शिकस्त आत्मा है कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे अंदर तो कोई क्वालिटी नहीं है, जहां उमंग उत्साह नहीं है, खुशी नहीं है, सेवा में रुचि नहीं है, वहां कहते हैं इसको ब्लॉकेज हो गई है। उमंग उत्साह का खून, वो नलियां, आर्टरी ब्लॉक हो गई, हार्ट की बीमारी हो गई। तो हमारे ब्राह्मण परिवार में हम सब सदा निरोगी एक रस रहें, उसके लिए चेक करो, चेक कराओ, कभी भी निराश उदास हताश नहीं होना, बाबा आपका साथी है, मददगार है। सिर्फ ध्यान रखो कि मैं एक रस स्थिति के लिए केवल ज्ञान और योग को आधार बनाऊं। ज्ञान और योग अगर फाउंडेशन में है, निश्चय अनुभव अगर फाउंडेशन में है, तो कोई भी बातें हिलाएंगी नहीं, अपने आप पार हो जाएंगे, पेपर आएंगे, खत्म हो जाएंगे और बाबा के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, ओम शांति। कुछ समय के लिए इस देह भान से डिटैच हो सकते हो। मैं तो जब नमाज शाम का समय होता है, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जैसे आवाज में आने की दिल ही नहीं कर रही है, बस चले जाए आवाज से परे। अभी बहुत आवश्यकता है, आप लोग कितना भी बिजी हो, लेकिन ये शाम का समय विश्व कल्याण की सेवा के लिए जरूर निकालो। अमृत वेले से भी पावरफुल योग इस समय होता है। शाम के समय आधा घंटा भी करो, 6:30 से 7 करो, 7 से 7:30 करो। मधुबन में तो सब दादियों ने नियम बना लिया है, 7 बजे के बाद कुछ कारोबार नहीं करनी, तैयार होके बैठ जाती हैं, 7 से 7:30 तक एकदम बाबा की याद में। तो विश्व कल्याण की सेवा के लिए आधा घंटा तो समय देना ही चाहिए, अपना कल्याण तो उसमें समाया हुआ है ही। तो इस नमाज शाम के समय अगर दिनचर्या को भी बांध देंगे, बहन जी ने आपको कल शायद आज वहां सुनाया बंजारा में एक बहुत सुंदर प्लानिंग यहाँ से हमको मिल रही है कि हम अपने आंध्रा और तेलंगाना में 21 दिन के लिए एक बहुत सुंदर प्रोग्राम बनाएं। जनवरी मास आ रहा है, 1 तारीख से 21 तारीख तक क्या प्रोग्राम बनाएं? कोई भी आपके मन में समस्या हो, लौकिक जीवन की उन्नति के प्रति कोई भी समस्या हो, उसके लिए बाबा को पत्र लिखें, खुद भी लिखें, अपने संबंधियों को भी बोलें कि ये वरदानी मास है, ज्ञानी है या अज्ञानी है सबको गार्ड को पत्र लिखो, और पत्र लिख करके बाबा के कमरे में बैठ करके बाबा को सुना करके वो पत्र जमा करो, और 21 दिन तक 6:30 से 7:30 रोज 1 घंटा संगठित रूप में, जो बाबा के बच्चे हैं वो तो इकट्ठे होकर के, और नहीं तो जिनको आप समझते हो ये योगी नहीं है, संपर्क संबंध वाले हैं, उनको मेडिटेशनों में अलग से एक ग्रुप बना करके उस समस्या समाधान के लिए बाबा से वरदान लेने के लिए 21 दिन का प्रयोग किया जाए। अपनी समस्याएं भी बाबा के आगे रखी जाएं, और परिवार में भी कोई की समस्याएं हैं तो उनको बोलो 21 दिन केवल 1 घंटा दो प्रयोग करो, और शायद उनके बीच में वो समस्या खत्म हो जाए, फिर अपना पत्र वापस ले जाए। अगर वो सीखना चाहे, योग क्लास कोर्स करना चाहे तो करे, और नहीं तो अपनी समस्या बाबा से वरदान लेकर के समाप्त करे। तो ऐसा कोई 21 दिन का प्रोग्राम पूरे आंध्रा और तेलंगाना में बनाया जाए, जितने सेंटर्स हैं, ऐसी प्लानिंग आज सुना है मैंने, कल हम टीचर्स के आगे रखेंगे। अगर यहाँ सक्सेस हो गए तो हम पूरे भारत में चलाएंगे। और बात बहुत अच्छी लगी मुझे, अच्छी है कि हमारे पास कई प्रकार के प्रॉब्लम्स हैं, नौकरी के, घर के, संबंधों के, बिजनेस के, कोई भी प्रकार की, बाबा के आगे रखो, बाबा को पत्र लिखो, बाबा ये बात है, आप इसके लिए शक्ति दो, सकाश दो, वरदान दो, ये समाप्त हो जाए, बाबा के आगे लिख करके रखो, और 21 दिन तक लगातार कंटिन्यू 21 दिन शाम को 6:30 से 7:30 और कुछ नहीं करना, 21 दिन तपस्या करो जनवरी मास में। चलो कोई सेवा के जहाँ प्रोग्राम है वहाँ की बात तो थोड़े समय की है, 1-2 दिन की है, लेकिन जहाँ नहीं है जो कर सकते हैं पर्सनल वो तो करें, 100% तो कभी कोई बात होती नहीं है, लेकिन हम लक्ष्य रखें जितने लोग कर सकते हैं ऐसा योग करें। मान लो आपका 2 दिन मिस हो रहा कोई कारण से, तो 2 दिन आप बढ़ा देना, 21 के बजाय 23 तक कर लेना, क्या है जी, ठीक है ना, ये पसंद है लाए, जो समझते हैं बहुत अच्छी है, कर सकते हैं, करेंगे सब। 1 घंटा सिर्फ तपस्या के रूप में योग करना है, ये नहीं उठे बैठे एक गया दूसरा आया, वो फिर मजा नहीं आता है। संगठन है अगर 10, 20, 50 का नहीं, 10 का है, 5 का ही है, 5 लोग ही बैठो, लेकिन बाबा को समाचार दे के 21 दिन तक प्रयोग करो, है तो अच्छा, अज्ञानी भी कई संपर्क में आएंगे, कईयों की उनकी समस्याएं भी दूर होंगी। तो प्लानिंग करना, विचार करना, अपने सेंटर्स पर बहनों को, बड़ी बहनों को बताना कि ऐसा ऐसा सोचा है, अगर होता है तो फिर एक एडवर्टाइज भी हो जाएगी टीवी पर, ईमेल भी सबको चला जाएगा, और 1 तारीख तो अभी आई की आई, 4-5 दिन में 25 तो हो गई आज, तो 6 दिन के बाद 1 जनवरी शुरू होगा, तब तक प्लानिंग कर लो। कहाँ गई बहने? आ रहे हैं? मुझे कहा 6 बजे पूरा करना है। सब संतुष्ट हैं? कोई प्रश्न तो नहीं रहा ना? भरपूर है ना? ऐसा है अगर कोई को खाना तो कोई को ही नहीं, वो तो सबने प्रतिज्ञा कर ली ना कि कोई भी अशुद्ध चीजें नहीं खानी है। लहसुन प्याज भी जब हम नहीं बनने देते भंडारे के अंदर, लेकिन परिवार में अगर कोई ऐसा है तो उसको समझाओ कि तुमको खाना है तो बाहर खाओ, हमारे बाबा के भंडारे में नहीं बने। माताओं को भी बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, 1-2 बार थोड़ा झगड़ा होता है, ठीक हो जाता है। नियम को अगर दृढ़ता के साथ फॉलो करेंगे कि हमको अपने घर में अब ऐसी चीजें न लानी है न बनानी है। भोग तो बाबा को उसी को लगाना चाहिए जिसके घर में योगी लोग हैं, अलग से भोग तभी लग सकता है। अगर एक ही भंडारे के अंदर दोनों चीजें बन रही हैं तो उस भंडारे का भोग हम बाबा को कैसे लगाएंगे, उन्हीं बर्तनों में बनाया हुआ भोग कैसे लगाएंगे। ठीक है, आपके आगे थाली आती है, आप जो खा रहे हैं उसका भोग भले लगाओ, भगवान को याद करके तो खाओगे, लेकिन विधि पूर्वक जो हमारी विधि है कि शुद्ध बनाने वाले के विचार शुद्ध हों, शाकाहारी हो, स्वच्छ भोजन हो, अच्छे बर्तनों में बने, तो वो बर्तनों का भोग अलग से बर्तन में डाल के बाबा के आगे रखना, बाबा की सकास देना, शक्ति लेना और उस भोग को उस भोजन में मिला देना। जितना भोजन बना उसमें मिला करके फिर सबको खिला देना। ऐसे नहीं 1 ही 2 खा लें, जो भी खाएं वो सब वही भोग खाएं, तो उसका प्रभाव पड़ता है। तो अगर आप बहुत अच्छी तरह समझते हो घर का वातावरण ठीक है, यहाँ नॉन वेज नहीं है, कोई ऐसी खान पान नहीं है किसी का, तो वहां पर बर्तन में भोग बना करके लगाया जा सकता है। बाकी अगर कुछ ऐसा बन रहा है आप तो परहेज रखो और परहेज के द्वारा अपने आप को बचाओ, समझाने का प्रयास करो, धीरे धीरे अगर मदद मिलती है तो अच्छा है, नहीं तो अपना भंडारा थोड़ा सा अलग करना, उसमें फायदा है, क्योंकि इसका असर तो पड़ता है मन के ऊपर। आज जो बन रहा है आप देखो, जितनी यात्रा हितराई हो रही है उसका कारण तो है वो जो खाते हैं ना, वो त्राही त्राही करके मरता है जानवर और वो पेट में मारे जाता है, तो मन कैसे शांत होगा, त्राही त्राही कराएगा वो तो। लेकिन खाने वालों को ये पता नहीं चलता है कि पाप हो रहा है, किसी को दुख दे करके हम खा रहे हैं, तो ऐसे चीजों से अपने को बचाना है। ठीक है, नियम मर्यादाओं में शुद्ध धन लिया तो था, नहीं लिया था क्या शुद्ध धन? ठीक है, ओके, योग करें? आ रही दीदी? चलो फिर भी योग करो सभी, त्रिभ्रकुटी आसन पर बैठ करके इस देश से डिटैच होकर चलो बाबा के पास वतन में, आत्मा पंछी बन करके इस सूर्य चांद तारा गणों की दुनिया से पार उस अखंड मह ज्योति तत्व में बाबा के ज्ञान सूर्य के नीचे बैठ कर सर्व शक्तियों की किरणें लोगों